लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो तानाशाही, निरंकुश सत्ता और यहाँ तक कि संकट में पड़े लोकतंत्रों के तहत मानव के मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं बुधवारीय आमदर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आमदर्शन समारोह के अवसर पर वेटिकन प्रेरित निवास के पुस्तकालय से सबों का अभिवादन करते हुए कहा,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La Chiesa è una grande scuola di preghiera. Molti di noi hanno imparato a sillabare le prime orazioni stando sulle ginocchia dei genitori o dei nonni.
Priya bhaiyo evam behno, suprabhat. Kalisya prarthana ka ek vrihad vidyalay hai. हम में से बहुतों ने अपने माता पिता या दादा दादियों की गोद में प्रार्थना करने की प्रथम शिक्षा पाई है। शायद हम सोने जाने के पूर्व अपने माता पिता के द्वारा सिखलाई गई प्रार्थना को यादगारी स्वरूप वहन करते हैं। यादगारी के इन क्षणों में हम उन गूढ़ बातों को पाते हैं जो सुसमाचार से प्रेरित हैं, जिसे सुझाव के रूप में हमारे अभिभावक हमें देते हैं। इस भांति जब हम बड़े होते तो अन्य दूसरी चीजों को हम अपने लिए प्रार्थना के साक्ष्य और शिक्षा स्वरूप पाते हैं। इन बातों को याद करना अपने में अच्छा है। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि एक पल्ली का जीवन और हर ख्रिस्तीय समुदाय अपने में धर्म विधि और समुदाय की प्रार्थना से प्रभावित होता है। बाल्यावस्था में प्रार्थना का सरल रूप जो हमें उपहार स्वरूप मिलता है हमारे लिए एक बहुमूल्य निधि बनती है और उस अनुभव पर हम अपने प्रार्थना में जीवन की गहराई में उतरते हैं। विश्वास का परिधान अपने में रूखा नहीं है बल्कि विभिन्न परिस्थितियों में उसका विकास होता है। हमारा विश्वास जीवन की विकट परिस्थितियों में विकसित होता है। विश्वास की सांस प्रार्थना है। हम जैसे जैसे प्रार्थना करना सीखते वैसे वैसे हम अपने विश्वास में बढ़ते हैं। अपने जीवन की कुछ परिस्थितियों के बाद हमें यह एहसास होता है कि विश्वास के बिना हम इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते और प्रार्थना हमारे लिए शक्ति बने। हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना को केवल नहीं बल्कि अपने भाई बहनों और समुदाय की प्रार्थना को अपने लिए पाते हैं, जो हमारे साथ रहकर हमें सहायता प्रदान करते। हम उनके सहचर्य को अपने लिए पाते जिन्हें हम जानते और जिनसे हमने अपने लिए प्रार्थना की मांग की। यही कारण है, संत पापा ने कहा, कि प्रार्थना करने वाले समुदाय और दलों का विकास कलिसिया में हुआ है।
Qualche cristiano sente perfino la chiamata a fare della preghiera l'azione principale delle sue giornate.
कुछ ख्रिस्तीय हैं जो अपने दिन की शुरुआत से पहले प्रार्थना को जीवन का प्रथम कार्य बनाते हैं। कलिसिया में मठे, कॉन्वेंट्स, आश्रम हैं, जहां ईश्वर को समर्पित लोग रहते हैं। वे प्रार्थना के केंद्र बनते हैं, जहां से आध्यात्मिक ज्योति प्रसारित होती है, जहां प्रार्थना में प्रतिदिन भ्रातृत्व में एकता साझा किया जाता है। वे न केवल कलिसिया के ताने बाने हैं बल्कि वे पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण अंग हैं। हम मठवासी जीवन के बारे में चिंतन करें, जिसके फलस्वरूप यूरोपीय और अन्य दूसरी संस्कृतियों तथा सभ्यताओं का जन्म और विकास हुआ। समुदाय में प्रार्थना और कार्य करना विश्व को आगे ले चलता है। यह एक इंजन के समान है, संत पापा ने कहा।
Tutto nella chiesa nasce nella preghiera.
कलिसिया में सारी चीजों की उत्पत्ति और विकास प्रार्थना से होती है। इसके लिए हम प्रार्थना के शुक्रगुजार हैं। जब शत्रु बुराई कलीसिया से लड़ाई करना चाहती है तो वह सबसे पहले प्रार्थना में बाधा उत्पन्न करती है। उन्होंने कहा कि हम बहुत बार कलीसिया में परिवर्तन लाने की बात कहते और कड़े निर्णय लेते हैं, लेकिन क्या हम सही रूप में प्रार्थना करते हुए उस निर्णय पर आते हैं? प्रार्थना हमारे लिए पवित्र आत्मा के द्वार को खोलती है जो हमें प्रेरित करते हैं। कलीसिया में प्रार्थना के बिना परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं है, वह दलों का परिवर्तन है। शत्रु हमारी प्रार्थना में बाधा उत्पन्न कर दूसरे सुझावों को हमारे लिए प्रस्तुत करता है। प्रार्थना में रुकावट आने पर भी सारी चीजें यथावत पहले की भांति चलती हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद कलीसिया अपने में एक खालीपन का अनुभव करती है। वह सारी चीजों को खोई अनुभव करती है। वह अपने में प्रेम और ऊर्जा की कमी का एहसास करती है। धर्मी नर और नारियों का जीवन अन्य दूसरे लोगों की तरह ही अपने में सहज नहीं है। उनकी अपनी समस्याएं हैं, उससे भी बढ़कर उन्हें बहुधा विरोधों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनके लिए शक्ति उनकी प्रार्थना है। वे माता कलीसिया में कभी खत्म न होने वाले कुएं से अपने लिए शक्ति ग्रहण करते हैं। प्रार्थना के द्वारा वे अपने विश्वास रूपी लव को पोषित करते हैं, जैसे दिए में तेल उपयोगी है। इस तरह वे अपने जीवन में विश्वास और भरोसे के साथ आगे बढ़ते हैं। संतगण जो दुनिया की नजरों में नगण्य दिखलाई पड़ते, वे वास्तव में इन्हीं चीजों से अपने को विभूषित करते हैं। उनके लिए हथियारे धन और शक्ति नहीं, वरन प्रार्थना है। संत लूकस के सुसमाचार में यीशु नाटकीय ढंग से एक सवाल पूछते हैं जो हमें सदैव चिंतन हेतु मदद करता है। जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? यह सवाल उस दृष्टांत के अंत में आता है जो हमें बिना थके धैर्य में निरंतर प्रार्थना करने को कहता है।
Dunque possiamo concludere che la lampada della fede sarà sempre accesa sulla terra finché ci sarà l'olio della preghiera.
अतः हम कह सकते हैं कि विश्वास का दीप इस धरती पर तब तक जलता रहेगा जब तक प्रार्थना रूपी तेल रहेगा। संत पापा ने कहा कि यह प्रार्थना है जो हमारे जीवन की कमजोरियों और पापमय स्थिति में भी हमें निश्चितता में आगे ले चलती है। उन्होंने कहा कि हमें अपने में यह पूछने की जरूरत है कि क्या हम प्रार्थना करते हैं, हम कैसे प्रार्थना करते हैं, तोते के समान या अपने हृदय से। क्या मैं कलीसिया में कलीसिया के साथ प्रार्थना करता हूँ या अपने ही विचारों के अनुसार छोटी प्रार्थना करता हूँ या मेरे विचार प्रार्थना बनते हैं? यह ख्रिस्तीय प्रार्थना नहीं बल्कि एक गैर ख्रिस्तीय प्रार्थना है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि विश्वास का दीप अपने में तब तक जलता रहेगा जब तक इसमें प्रार्थना रूपी तेल रहेगा।
E questo è un compito essenziale della Chiesa, pregare ed educare a pregare.
प्रार्थना करना और प्रार्थना करने की शिक्षा देना कलीसिया का एक मुख्य कर्तव्य है। हमें विश्वास के दीप और प्रार्थना रूपी तेल को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित करना है। विश्वास का दीप हमें प्रकाशित करता है। वास्तव में इसके द्वारा चीजें व्यवस्थित होती हैं, जैसे कि वे हैं, लेकिन यह केवल विश्वास रूपी तेल के साथ आगे बढ़ सकता है। ऐसा नहीं होता तो यह बुझ जाएगा। दिए की ज्योति बिना हम सुसमाचार प्रचार की राह को नहीं देख पाएंगे। हम अपने भाई बहनों के चेहरे को देखने के योग्य नहीं रहेंगे जिन्हें हमारी सेवा की जरूरत है। हम अपने समुदाय के मिलन स्थल को प्रकाशित नहीं पाएंगे। विश्वास के बिना सारी चीजें गिर जाती हैं और प्रार्थना के बिना विश्वास बुझ जाता है। संत पापा ने कहा कि विश्वास और प्रार्थना एक साथ जाती है, इसके सिवाय कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यही कारण है कि कलीसिया एक घर के रूप में एकता का विद्यालय, विश्वास और प्रार्थना का स्कूल है। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
हे हमारे पिता
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने 14 अप्रैल को वाटिकन के प्रेरितिक आवास के पुस्तकालय से बुधवारी आमदर्शन समारोह के दौरान प्रार्थना पर धर्म शिक्षा दी। इसी के मद्देनजर उन्होंने ट्वीट कर विश्वास और प्रार्थना के बीच आपसी संबंध को समझाते हुए प्रार्थना करने की प्रेरणा दी। संदेश में संत पापा ने लिखा, विश्वास की सांस प्रार्थना है। जब हम प्रार्थना करना सीखते हैं तो हम विश्वास में बढ़ते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कलीसिया की धर्माचार्य के रूप में अविला की संत तेरेसा की उद्घोषणा की 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित करते हुए अविला महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष गिल तमायो को प्रेषित अपने संदेश में संत पापा ने कहा कि संत तेरेसा कलीसिया की धर्माचार्य बनने वाली पहली महिला थी। उन्होंने कहा कि सम्मान उनके अनमोल शिक्षण की मान्यता थी, जिसे ईश्वर ने उनके लेखन और जीवन की गवाही के माध्यम से हमें प्रेषित किया है। 50 साल पहले 27 सितंबर 1970 को संत पापा पॉल छठे ने अविला की संत तेरेसा को कलीसिया की धर्माचार्य का खिताब दिया था। स्पेन में अविला कैथोलिक यूनिवर्सिटी इस ऐतिहासिक वर्षगांठ को असाधारण महिला नामक एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में मना रही है। जैसा कि संत पापा पॉल छठे ने संत तेरेसा को इस नाम से वर्णित किया था, यह समारोह 15 अप्रैल तक चलेगा। संत तेरेसा का जन्म 1515 में हुआ और 1582 में उनकी मृत्यु हुई। संत पापा फ्रांसिस ने अपने संदेश में लिखा, संत तेरेसा में यीशु ने जो ज्योति जलाई है, उनकी मृत्यु के लगभग आधी सहस्राब्दी के बाद भी वह इस दुनिया में हमेशा चमकती रहती हैं। साहसी गवाह जो किसी भी दीवार को तोड़ने में सक्षम है, चाहे वह भौतिक या सांस्कृतिक हो। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और तप का भी हवाला दिया। सुंदरता के प्रति संवेदनशीलता और सभी के प्रति आध्यात्मिक मातृत्व प्रदान किया, जिन्होंने उनसे आग्रह किया। संत पापा ने कहा, पूरे इतिहास में जिन महिलाओं ने कलीसिया और समाज में असाधारण भूमिका निभाई है, वे उसका एक उदाहरण थीं। अविला की संत तेरेसा के लेखन के लिए धन्यवाद, जो आज भी हमारे लिए एक संदेश है। संत पापा फ्रांसिस ने उल्लेख किया कि उनका संदेश और उदाहरण सभी के लिए है, उन लोगों के लिए जो धार्मिक जीवन की पुकार महसूस करते हैं
और उन सभी के लिए भी जो सांसारिकता से शुद्धि के मार्ग पर प्रगति करना चाहते हैं, जो ईश्वर के साथ मिलकर अपने आध्यात्मिक जीवन को मजबूत करना चाहते हैं। संत पापा ने संत जोसेफ के प्रति संत तेरेसा की महान भक्ति को याद करते हुए और उनके संदेश और शिक्षाओं को गहराई से लेने हेतु सभी विश्वासियों को प्रोत्साहित करते हुए अपने संदेश को समाप्त किया। उधर फ्रांस स्थित रियूनियन धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष गिलबर्ट आवरी ने पत्र लिखकर रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत में मुसलमानों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत में मैं आपकी प्रार्थनाओं में शामिल हूं, ताकि सृष्टिकर्ता अपने रहमत और दया द्वारा हर बुराई के खिलाफ ढाल बने। यह हमारे परिवारों में, समाजों में हिंसा को खत्म करने में हमारी मदद करे और एक ऐसी दुनिया का निर्माण करने में हमारी मदद करे जिससे हम में से प्रत्येक शांति में रह सकें। धर्माध्यक्ष ने इस बात पर गौर किया कि कोविड-19 महामारी ने विभिन्न धर्मों के विश्वासियों को प्रार्थना के लाभों को फिर से परिभाषित करने, ईश्वर के साथ अंतरंगता और संकट में दूसरों के साथ एकजुटता के लिए प्रेरित किया है। धर्माध्यक्ष आबरी ने कहा, उपवास, प्रार्थना और भिक्षा आज भी यहूदी, ईसाई और मुस्लिम को एकजुट करता है। हमारे पास आदम और हेवा, नूह, अब्राहम और मूसा जैसे सामान्य पूर्वज हैं। आइए हम कुंवारी मरियम का आदर करें, जो यहूदियों, ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच सामान्य मानव और आध्यात्मिक जुड़ाव की पहचान है। अंत में धर्माध्यक्ष ने उन लोगों को शुभकामनाएं दी जो रमजान की आशा का अनुभव करेंगे, यह याद करते हुए कि विश्व पत्र फ्रतेली तुत्ती में संत पापा फ्रांसिस ने इसे एक आकांक्षा, परिपूर्णता की इच्छा, एक सफल जीवन, एक महान जीवन को छूने की इच्छा जो दिल को भर देता है और यह मन को सच्चाई, अच्छाई और सुंदरता, न्याय और प्रेम जैसी महान चीजों से जोड़ता है। महान आदर्शों के प्रति खुला होना जो जीवन को अधिक सुंदर और अधिक योग्य बनाते हैं। विदित हो कि मुस्लिम समुदाय में रमजान का महीना 13 अप्रैल से शुरू हो गया है। भारत में इसे 14 अप्रैल के दिन मनाया गया। रमजान के महीने की शुरुआत चांद देखकर की जाती है। चांद दिख जाने के अगले दिन से रोजे रखे जाते हैं। मुस्लिम समुदाय में इस महीने को बरकतों का महीना माना जाता है। रमजान के महीने में 29 या 30 दिन के रोजे रखे जाते हैं और इबादत की जाती है। उधर म्यांमार के इरावाडी डिवीजन के पातिन धर्म प्रांत में कम से कम 4 कैथोलिक गिरजाघरों में 8 अप्रैल को पुलिस और सैनिकों द्वारा कथित अवैध गतिविधियों या तख्ता पलट विरोधी कार्यकर्ताओं की तलाश में छापे मारे गए थे। कलिसियाई सूत्रों के मुताबिक सशस्त्र बलों ने कैथोलिक गिरजाघरों के भीतर और कब्रस्तान के आसपास जांच की। पास्का सप्ताहांत ईसाई बहुल कचिन राज्य में कैथोलिक गिरजाघरों में सैन्य छापे के बाद अन्य गिरजाघरों में छापा मारना जारी है। वाटिकन फिडेस न्यूज एजेंसी के एक सूत्र ने कहा कि हाल ही में मोहनिन शहर में सेना ने बैप्टिस्ट, कैथोलिक और एंग्लिकन गिरजाघरों में छापा मारा। सुरक्षा बलों ने शान राज्य के लाशियों में एक कचिन बैप्टिस्ट गिरजाघर के गेट को तोड़ा और 10 से अधिक धार्मिक नेताओं और कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सैनिकों ने अपनी खोज के दौरान पल्ली परिसर के अंदर गोलाबारी की। वे बौद्ध मठों और मंदिरों को भी छापे का निशाना बना रहे हैं। सुरक्षा बलों ने सोमवार तक 710 प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार चुका है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।